15 minutes could save you 15% or more.
Oh, that's a cheer we used to do in softball.
What? It's actually Geico's.
Whenever someone hit a triple, we would wave our bats and yell, 15 minutes could save you 15% or more. But we never got to use it because we would only hit home runs. Annoying.
The phrase is from Geico because they help save people money.
Geico? Yeah, they were our team sponsor.
Geico. 15 minutes could save you 15% or more.
Studio Logic Box Originals. किस्सा कहानी में मैं निधि बासु आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ दिल छूने वाली कहानियाँ। किस्सा कहानी बाय निधि बासु पॉडकास्ट के छठे सीजन में आप सबका स्वागत है। आज पहले एपिसोड में सुनिए हेमलता महेश्वर जी द्वारा लिखी कहानी कर का मन का डार के का पहला भाग। वाचन है निधि बासु का।
और पता है दी, एट द लास्ट मोमेंट उसने सुसाइड कमिट कर ही लिया।
कौसर ने मुझे बताया। व्हाट अबाउट हुम आर यू टॉकिंग? मैंने चौंकते हुए उससे पूछा।
अरे वही गुटका प्रसंग वाली।
उसने पहेलियां बुझाना जारी रखा। पूरे 2 साल बाद मुलाकात हो रही थी उससे। ऐसे ही गायब हो जाती है वो, जब भी बात करेगी पूरे उत्साह से अपनी सारी गतिविधियों की जानकारी देती है, जैसे मैं उससे हिसाब मांगती हूँ उसके पलछिन का। आज यहाँ धरना तो कल वहां प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के बंगले के बाहर तो कभी विधानसभा घेरने की बात। जब औपचारिक होगी तो मैं उसके लिए मैम होती हूँ और अनौपचारिक होगी तो दी। दुबली पतली सी काया लिए फुरफुंदी की तरह यहाँ वहां डोलती रहती है। मेरी आंखों की चौंध वो पढ़ लेती है और फिर मेरी स्मृतियों के ठहरे पानी में कंकड़ नहीं पत्थर मारती कहती है।
अरे दी, आप कैसे भूल सकती हैं? याद नहीं है वो परिवार परामर्श केंद्र वाली वर्कशॉप?
उसके कहन ने तमाम ठहराव में जैसे औचक ही गोता मारा और अतल गहराइयों में छिपी स्मृतियों को वापस सतह पर तैरा दिया। ओ हाँ, याद आया, तब तो वो लड़का बेचारा बहुत दुखी हुआ होगा। मैंने सहानुभूति जताई।
हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, आपको तो पता ही है लड़की को तो घर में कोई पसंद करता नहीं था। उस लड़के की शानदार दूसरी शादी हो गई और सुना है इस बार तो खूब दान दहेज भी मिला है।
उसके व्यंगात्मक लहजे में जैसे कांटे उभर आए थे। मैं एकदम चुप हो गई और मुझे 3-4 साल पुरानी बात याद आ गई।
हेलो, हाँ मैम, कौसर बोल रही हूँ। हाँ मैम, आपको आना है इसी महीने की 23 को रायपुर। हाँ वही रविंद्र मेमोरियल हॉल में, पूरे दिन की वर्कशॉप है। पता है ना कहाँ है? अरे वही विजय स्तंभ चौक।
कौसर पूरे उत्साह से कह ही रही थी कि मैंने उसे बरजा था।
हाँ बाबा पता है, बस तुम ये सोच लो कि मैं सुपात्र हूँ या नहीं तुम्हारी वर्कशॉप के एक्सपर्ट के तौर पर।
कैसी बातें कर रही हैं आप दी? आपके तो हम उसी दिन से कायल हो गए थे जब से आपको यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में ट्रेन कांड पर बात करते सुना था।
कौसर, उस बात पर बात करना मेरे लिए बनिस्बत आसान था तुम्हारे इस काम के, पर खैर तुम्हें मुझ पर यकीन है तुम मैडम जी, हमें आपके यकीन पर यकीन है। चलो बाय।
बाय मैम।
मैंने उसकी संगीनी को कुछ विगलित करने का प्रयास किया और हुआ भी बिल्कुल वही। वो हंस पड़ी और मैंने चैन की सांस ली कि चलो फिर किसी को नाराज करने से बच गई। पूरे 3.5 या 4 घंटे लगते हैं रायपुर पहुंचने में। सारे रास्ते मेरे भीतर यही चलता रहा कि आखिर मैं वहां जा ही क्यों रही हूँ। मैं खुद ही खुद के सवालों में घिरी रास्ता तय कर रही थी। पूरे समय खुद को बरज रही थी कि आखिर घर से निकलना ना निकलना तो मेरे बस में था ना। क्या वो अपनी व्यस्तता छोड़कर मेरे पास ये देखने आती कि मैंने कोई बहाना तो नहीं किया है? अरे
कह ही देती तबीयत ठीक नहीं या कोई जरूरी मीटिंग निकल आई या बेटे की तबीयत ठीक नहीं या अचानक मेहमान आ गए, कुछ भी। पर नहीं साहब, रघुकुल रीत जैसे तुलसीदास जी हम ही लोगों के लिए बना गए थे। वचन दिया है बेटा तो पूरा भी करो। फिर सोचा कि जैसे कमान से निकला तीर और जुबान से निकला शब्द वापस नहीं लौटाया जा सकता, वैसे ही अब शिव नदी के पुल पर पहुंचकर वापस नहीं जाया जा सकता। अब मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं वहां क्या कर सकती हूँ। मैं उनकी क्या सच में कोई काउंसलिंग कर पाऊंगी, जैसे कि कौसर मुझसे अपेक्षा कर रही है? यदि उन्होंने कोई बहुत कठिन चुनौती खड़ी कर दी तो? ऐसा नहीं था कि मैंने कौसर से वर्कशॉप के नेचर की जानकारी न ली हो। मैंने भरपूर जानकारी ली थी। अपनी पिछली यात्रा में उसने मुझे बताया था कि अब तो घरेलू हिंसा एक्ट आ गया है, वरना पति पत्नी में कोई अनबन जब हिंसा का स्वरूप लेती है और पत्नी परेशान होकर जब अदालत का दरवाजा खटखटाती है तो अक्सर ही मामला दहेज का बनता था। ऐसे मामलों को सुलझाने या किसी निर्णय तक पहुंचने में अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता और समय तो निश्चित ही काफी लगता भी था। सो सरकार ने तय किया था कि महिला पुलिस थाने के अंतर्गत परिवार परामर्श केंद्र की शुरुआत की जाए, ताकि काउंसलिंग के द्वारा मामले सुलझाने का प्रयास किया जाए। तो यहाँ सलाह मशवरा कौन देता है?
बताती हूँ दी, महिलाओं के अधिकारों को लेकर जो महिलाएं स्वतंत्र या संगठन के रूप में काम कर रही हैं, उन्हें ही प्रशासन परामर्शदाता की ये जिम्मेदारी दे देता है। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि इस समिति में एक महिला प्रसूति चिकित्सक, एक महिला वकील और एक महिला मनोचिकित्सक अनिवार्यतः हो।
अच्छा, तो इसका मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने में सरकार सफल?
अरे कहां दी, योजना तो जिस पुनीत भाव से आरंभ की गई थी वैसे ही फिसड्डी भी हो गई।
वो क्यों? मैंने चौंकते हुए पूछा।
इस देश में राजनीति जो ना करवा ले, परिणाम ये हुआ कि परामर्शदाता बनने के लिए ही लड़ाइयां शुरू हो गईं।
तो फिर
क्या दी, इस वजह से घरों में लड़ाइयां तो बंद नहीं हो गई ना, और इसीलिए ऐसे में काम तो किसी भी हालात में करना ही है।
उसने आदतानुसार चुटकी लेते हुए खुद के भीतर के जोश को फिर से इकट्ठा करते हुए कहा, भैया तुम्हें तो सलाम है, प्रणाम है, पर कौसर जैसे कि तुम बता रही हो कि मामला राजनीतिक हो गया है, तो क्या ये परामर्शदाता सच में किसी स्वतंत्र चिंतन के साथ कुछ सुझाव देते हैं या फिर वैसे ही?
यही तो पेच है दी, जिस तरह की राजनीतिक पृष्ठभूमि से ये लोग आते हैं ना, वैसे ही सुझाव। मतलब कि निष्पक्षता और परिपक्वता की जैसी मांग होती है वो पूरी नहीं हो रही है। इसीलिए तो हमारा संगठन कार्यशाला आयोजित कर रहा है, ताकि हम सरकार को कुछ फीडबैक दे सकें।
तो क्या सरकार तुम्हारी बात सुनेगी?
इसका तो पता नहीं, पर हमारे पास अगर कुछ तथ्य इकट्ठा हो जाएं, तो शायद हम कुछ ठोस बातचीत कर सकें।
तो ठीक है कौसर, जब भी मेरी जरूरत पड़े बता देना, मैं जरूर तुम्हारे साथ काम करूंगी, जैसे भी बन पड़ेगा। मैंने अपने सारे हथियार डाल दिए और फिर उसका फोन जब आया तो मेरे सामने ना का सवाल ही नहीं था। मैं निकल पड़ी थी। वो ये बताना भी नहीं भूली कि परामर्शदाताओं को आसपास और दूर दराज के छोटे मोटे शहरों से भी बुलाया है,
और जानती है इस कार्यशाला में उन्हें बुलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा है। यदि हम उनसे कहते कि आप लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशाला हो रही है तो वे छूटते ही कहती कि अब हम जो सबको समझा रहे हैं हमें भी समझाने वाले पैदा हो गए। इसलिए हमने उनसे कहा कि आप लोग जो काम कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, इसकी जानकारी लेना है, ताकि आप लोगों को और अच्छी परिस्थितियां उपलब्ध करवाई जा सके। इसलिए वो लोग तैयार हो गए।
मैं समय से पहले ही कौसर के बताए स्थान पर पहुंच गई थी। उस हॉल की सजावट को देखकर फिर से एक बार मुझे कौसर की समझदारी पर रश्क हुआ था।
कमरे में चारों तरफ सिर्फ दरी ही बिछी हुई थी। कुर्सी और मंच जैसी कोई व्यवस्था उसने नहीं कर रखी थी ताकि अनौपचारिक वातावरण में आसानी से बात हो सके। उसने मुझसे अब आकर पूछा,
दी आप कंफर्टेबल तो हैं ना?
अब मैं क्या बोलूं? ओखली में तो सर खुद रखवा लिया और अब पूछ रही हो? मैंने भी लपट कर कहा।
दी वे अपने अपने अनुभव बताएंगी कि किस तरह की समस्याओं से उनका सामना होता है। आपको उनकी समस्याएं सुनना है और बड़ी मुलामियत से उन्हें ये सुझाव देना है कि और बेहतर तरीके से काम कैसे किया जा सकता है। बस इतना ही तो। और आप तो इस विषय पर इतना बोलती लिखती रहती हैं। और फिर आप अकेली थोड़े ही हैं। आपको मिलाकर 5 लोग हैं हमारे एक्सपर्ट।
कौसर ने थोड़ी चुटकी ली और मेरे तनाव को दूर करने का भी प्रयास किया। मैं मुस्कुराए बगैर न रह सकी। जीवन के रूखे सूखे बीहड़ में भी हास परिहास का सोता उसके भीतर फूटता रहता। उसकी इसी अदा पर तो मैं यहाँ खींची चली आई थी।
आप सुन रहे थे हेमलता महेश्वर जी द्वारा लिखी कहानी कर का मन का डार के का पहला भाग। वाचन था निधि बासु का।
Hey, which glasses look better on me?
Oh, what's this?
Zenni's 3D virtual try-on. Pretty cool, right?
I don't know about the purple cat eyes.
I think they're fun. What about these tortoiseshell glasses? Or these rimless sunglasses? Oh, what about these clear frames?
Wait, are those prices real? Do they have glasses for men?
Yep, they also have affordable blue light glasses.
Seriously? At those prices? Get them all.
I like where this is going.
Zenni.com. Quality prescription glasses starting at $695.